नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हुआ। अरुणाचल प्रदेश की रूपा बायर ने वर्ल्ड टाइकोंडो डब्ल्यूटी वर्ल्ड रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंचकर इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी। अरुणाचल प्रदेश के वन इकोसिस्टम में रोव बीटल की एक नई प्रजाति की खोज हुई। स्टेफिलिनरे परिवार का ये बीटल प्राकृतिक शिकारी और डिकम्पोजर के तौर पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। रामसा स्थित अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज में आयोजित बिजनेस कॉन्फ्रेंस और अरुणाचल इन्वेस्टर्स समिट में शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने भाग लिया। हाल में संपन्न हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में अरुणाचल प्रदेश ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम कर राष्ट्र स्तर पर पांचवा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान और ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के 4 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। भारतीय ध्वज वाला LPG टैंकर ग्रीन सावनी युद्धग्रस्त हॉर्मुज जल डबरू मध्य को पार कर स्वदेश पहुंच रहा है। और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे की युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब समाचार विस्तार से। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हुआ। असम, केरलम और पुदुचेरी में प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। केरलम में प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक राज्य में महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रही है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज केरलम में प्रचार करेंगे। श्री मोदी तिरुवला स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज अल्पुझा में एक जनसभा को संबोधित किया। वे इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में भी प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री और CPIM के वरिष्ठ नेता पिनाराई विजयन कुन्नूर में प्रचार कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालाकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
अरुणाचल प्रदेश की रूपा वायर ने वर्ल्ड टाइकोंडो WT वर्ल्ड रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंचकर इतिहास रचा है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुश्री वायर को बधाई देते हुए कहा है कि यह न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण भी है। उन्होंने समर्पण, अनुशासन और अथक परिश्रम ने भारतीय टाइकोंडो के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अरुणाचल के वन पारिस्थितिकी तंत्र में रॉ बीटल की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। स्टेफिलिनरे परिवार का ये बीटल प्राकृतिक शिकारी और डिकम्पोजर के तौर पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपमुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा कि इस तरह की खोजें इस बात को उजागर करती है कि राज्य का समृद्ध वन्य जीव अभी भी कितना अनछुआ और अज्ञात है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर नई खोज अरुणाचल के प्राचीन वनों को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है कि ये वन अनगिनत दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियों का घर है जिनका भी दस्तावेजीकरण होना बाकी है। शिक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री पीडी सोना ने नामसा स्थित अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज में आयोजित बिजनेस कॉन्फ्रेंस और अरुणाचल इन्वेस्ट समिट में हिस्सा लिया। इसका आयोजन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन IIA द्वारा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने हरित उद्योग को स्वागत करने और उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे निवेश जीविका के अवसर पैदा करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करते हैं और अरुणाचल में सतत विकास को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरलिंकेज सेंटर और IIA की सदस्य कंपनियों के बीच 16 MOU पर हस्ताक्षर होना पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं और उद्यमियों के लिए सहयोग, नवाचार और अवसरों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हाल ही में संपन्न हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अरुणाचल प्रदेश ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम कर राष्ट्र स्तर पर पांचवा स्थान हासिल किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 3,000 से अधिक एथलीटों ने 7 अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के 4 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते के अनुसार मेरठ निवासी शाकिब उर्फ डेविड और अरबाब तथा गौतम बुद्ध नगर निवासी विकास गहलावत और लोकेश सहित चार संदिग्धों को कल गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इस मॉड्यूल ने रेलवे सिग्नल बॉक्स, भीड़भाड़ वाली जगहों, गैस सिलेंडरों से लदे वाहनों और प्रतिष्ठित संगठनों के परिसरों में विस्फोट करके दहशत फैलाने की योजना बनाई थी और उनका पहला निशाना लखनऊ रेलवे स्टेशन था। शाकिब, जो कि एक नाई के रूप में काम करता था, इस गिरोह का सरगना था और वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन सावनी युद्धग्रस्त हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार करके स्वदेश आ रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पार करने वाला ये सातवां भारतीय एलपीजी टैंकर है। पश्चिमी फारस की खारी क्षेत्र में इस समय कुल 17 भारतीय ध्वज वाले जहाजों में 400 से अधिक भारतीय नागरिक सवार है। अब तक खारी क्षेत्र में 1130 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापस हो चुकी है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के हमलों से जहाजों की सुरक्षा के लिए रचनात्मक बल प्रयोग अधिकृत करने पर मतदान स्थगित कर दिया है। प्रस्ताव पर मतदान की नई तिथि भी घोषित नहीं की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण गुजरात के वडिनार से चीन की ओर ईरानी कच्चे तेल की कार्गो को मोड़े जाने की खबर तथ्यात्मक रूप से गलत और आधारहीन है। श्री पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने ईरान सहित अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक उथल पुथल केवल पारिस्थितिक जन्य नहीं है बल्कि प्रकृति और संरचनात्मक भी है और इससे विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में IIM रायपुर के दीक्षांत समारोह में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व एक अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित माहौल में खुद को सुरक्षित करने की चुनौती का सामना कर रहा है।
Everything today is being leveraged.
आज हर मौके का लाभ उठाया जा रहा है, भले ही उसे हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा हो। विश्व एक अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित माहौल में खुद को सुरक्षित रखने की चुनौती का सामना कर रहा है। राष्ट्र और उद्योग दोनों में जोखिम और संचालन के खतरे को कम करने और अपने स्रोतों में विविधता लाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह दृष्टिकोण व्यावसायिक निर्णयों या विदेश नीति के मामले में आवश्यक होता जा रहा है।
ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे की युद्ध विराम के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ये प्रस्ताव तीसरे देश के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन ईरान ने हमले रोकने के बजाय अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान द्वारा प्रस्ताव नामंजूर किए जाने पर अमेरिका ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान में हमले जारी रख दबाव बनाया हुआ है। ईरान के अधिकारियों ने प्रमुख बुनियादी ढांचों के पास हुए हमलों में और हताहतों के बारे में जानकारी दी है। ईरान ने ये प्रस्ताव ऐसे समय में खारिज किया है जब उसकी सेना ने युद्ध में पिछले कुछ घंटों में अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान और एक F-10 थंडरबोल्ट विमान को मार गिराने का दावा किया है और अपनी शर्तें पूरी होने तक कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। राजनयिक गतिरोध जारी है क्योंकि दोनों पक्ष समझौते के बजाय और हमले के संकेत दे रहे हैं। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
पश्चिम एशिया में संकट के बीच कोल इंडिया लिमिटेड देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोल इंडिया के अध्यक्ष बी साईराम ने आकाशवाणी को बताया है कि ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले का भंडार उपलब्ध है।
कोल इंडिया पूरी तरह से तैयार है क्योंकि आज की डेट में पर्याप्त कोयले का पीठहेड में स्टॉक है, थर्मल पावर प्लांट्स के पास में भी अच्छा स्टॉक है और उसके अलावा हमारी जितनी माइंस हैं, माइंस के अंदर में भी हमने कोल सीम्स को एक्सपोज करके रखा हुआ है ताकि कभी भी डिमांड आए और रिक्वायरमेंट आए हम उस कोयले को एक्सकवेशन करके और उसको पावर प्लांट तक भेज सके। जब हम कोयले को प्रेषण करेंगे तो हमको रेल माध्यम से प्रेषण करना पड़ेगा। उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल और रेल मंत्रालय वो आपस में बात करके किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा कोयला पावर प्लांट तक भेज सकेंगे उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं।
उद्योग जगत ने कई महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क छूट देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। विक्टोरिया टूल्स के अध्यक्ष SS बंगा ने इसे एक बड़ा प्रोत्साहन बताया और कहा कि इस कदम से उत्पाद लागत कम होगी, उपलब्धता में सुधार होगा और घरेलू एवं निर्यात बाजारों को समर्थन मिलेगा। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 से कानून में बदलाव आएंगे और व्यापार में सुधार होगा। श्री शेखावत ने कहा है कि मामूली तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा, इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज और अधिक तर्कसंगत बनेगी। श्री शेखावत ने कहा है कि इस कदम से व्यापारियों को आत्मविश्वास बढ़ेगा और न्यायालयों पर कार्यभार भी कम होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।